Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये उपनिषद आदि की भी चर्चा इसीलिए की जाती है कि हमारे चित्त की वृत्ति कहाँ लगी रहे, अपने स्वरूप के अलावा, आत्मचिंतन के अलावा, अनात्म चिंतन में जरा सा भी न जाए, तो बता दे दुख कैसे दूर हो जाएंगे। ध्यान देना, दुख कैसे दूर हो जाएंगे यदि मन वहां नहीं जाएगा। तो प्रश्न हुआ ना, बाहर की परिस्थितियों को बिना बदले हमारे मन का दुख कैसे शांत हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ, हमारा दुख बाहर की परिस्थितियों से है या बाहर की परिस्थितियां हमारे मन में आती हैं तब दुख होता है। देखना, बाहर की कोई परिस्थिति आपको दुख नहीं देती है। अभी मान लो थोड़ी समय के लिए पेरिस में हमला हुआ है, नहीं? अब कोई व्यक्ति गांव का है जिसने टीवी ट्रांजिस्टर कभी सुना नहीं है, अब बताओ उस हमले के बावजूद भी उसका चित्त दुखी या सुखी क्या होगा, मेरे बता दो। कुछ नहीं होगा ना, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका चित्त ने उस विषय को अपना है, मन में जगह नहीं दिया। तो ऐसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, जो अध्यात्म चिंतन में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसकी चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप में इतनी डूबी रहती है, आत्मचिंतन में इतना तन्मय रहता है, इतना तत्पर रहता है कि उसको अनात्म चिंतन के लिए, संसार के किसी विषय पदार्थ के लिए, पदार्थ के चिंतन के लिए जरा सा अवसर ही नहीं मिलता। और उस अवसर के न मिलने से उसको उस परिस्थिति से होने वाली सुख अथवा दुख का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। आपने सुना होगा एक श्रीधर स्वामी हुए हैं, श्रीधर स्वामी, इन्होंने भागवत पे, महाराष्ट्र के हैं कि साउथ के हैं? श्रीधर स्वामी महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने भागवत पे टीका लिखी है, वो महाराष्ट्र की हैं। तो कहते हैं कि वो शुरू में तो कहते हैं बड़े मूर्ख ही थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब भागवत पे टीका लिखना शुरू किए तो उनकी माँ उनको भोजन देती थी, और भोजन देती थी बिना नमक का ही दिया करती थी। अब भोजन किया करते थे बेचारे, तो जिस दिन ग्रंथ लिख गया पूरा हो गया होगा तो उस दिन फिर माँ ने भोजन दिया, जैसे भोजन दिया खाया का, माँ इसमें तो नमक है ही नहीं, माँ इसमें नमक डाली नहीं तूने। तो माँ ने कुछ नहीं पूछा, बेटा तेरा पुस्तक जो लिख रहा था वो पूरी हो गई क्या? कहेंगे हाँ माँ पूरी हो गई। तो कहा तभी तुम्हें नमक का ध्यान आया, ध्यान देना, तभी तुम्हें नमक का ध्यान आया। मैं बिना नमक का रोज ही तुम्हें भोजन दिया करती थी, लेकिन तू उस पुस्तक के लिखने में इतना तन्मय था कि तुम्हें बाहर के रस का, रसी नहीं, पांचों जो विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, तेरी चित्त की वृत्ति दिन रात उसी चिंतन में डूबी हुई थी, इसलिए तुम्हें उससे होने वाला सुख और दुख दोनों से तुम क्या रहा, निर्लिप्त रहा। तो अपने चित्त की वृत्ति को उस अच्युत में, उस परमात्मा में, उस आत्मा में इतना डुबो दो कि हमारे चित्त में जरा सा भी संस्कार न रह जाए कि संसार के किसी भी विषय भोग में जरा सा भी सुख है। यदि जरा सा भी संस्कार रह गया न, तो कभी न कभी वो छोटा सा संस्कार आज भले नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन 10 साल के बाद वही संस्कार हो सकता है एक वृक्ष बनकर के खड़ा हो जाए। इसलिए शुरू में कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं है, उसके भीतर वो संस्कार पड़े हुए हैं। अब बाहर की जैसी परिस्थिति आती है तो छोटा से छोटा संस्कार भी क्या बन जाता है, वृक्ष बन करके हमें संसार में डुबा देता है, संसार में हमें फंसा देता है। तो अपने चित्त की वृत्ति को उस परमात्मा में इतना डुबो दो कि बाहर के विषयों का न प्रशंसा सुनो न क्या सुनो निंदा सुनो, तो न उससे होने वाला आपको सुख होगा और न दुख होगा। क्या करता महाराज, चिंतन करने से नुकसान भी क्या है? आप कह सकते चिंतन करने से नुकसान भी क्या है? कहा भाई बाहर के विषयों का चिंतन करने से क्या है, नुकसान ही नुकसान है। हाँ वही कहते हैं अन्य सामयो न पापानी चिंतित आत्मनो यथा। जिसे हम अपने पाप का चिंतन करते हैं क्या? जो हम अपने पाप करते हैं उसका कभी चिंतन करते हैं क्या? ऐसे जैसे हम अपने पाप का नहीं चिंतन करते वैसे हम दूसरे के भी पाप का चिंतन न करें। तो जब पाप का चिंतन नहीं करेंगे तो पाप आएगा क्या? बोलो भाई, जिसका आप चिंतन करोगे मन में उसी का क्या बनेगा, संस्कार बनेगा। और जिसका संस्कार बनेगा मन उसी कर्म के फल को भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने महाराज त्यागमूर्ति जी महाराज बहुत बढ़िया बोलते हैं, दूसरे की बुराई का चिंतन करना शुरू कर दोगे ना तो दूसरे के भीतर जो बुराई है ना वह बुराई तेरे भीतर ही आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। इसलिए हमें दूसरे की बुराई का चिंतन करना नहीं है। तो कहो महाराज जी बुराई का चिंतन न करें लेकिन भलाई का चिंतन तो करें, नहीं करें? क्यों भाई, भलाई का तो करें? कहते हैं भलाई भी बुराई है। भलाई भी क्या है नहीं समझ पा रहा। जिसे आजकल बड़ा एक डिबेट चल रहा है, अच्छा आतंकवाद है बुरा आतंकवाद है, क्यों भाई यही चल रहा है ना? तो आतंकवाद अच्छा भी होता है बुरा भी होता है क्या? बुरा ही होता है ना। तो चाहे जो भी कर्म होवे, जो कर्म जन्म खड़ा कर देवे वह कर्म बुरे ही होते हैं। क्या है? जो कर्म आपको जन्म खड़ा कर देवे वह चाहे कर्म कौन से होवे, अच्छे होवे, चाहे कर्म क्या होवे, बुरे होवे, जिसको आप अच्छा बुरा कहते हो, वह दोनों ही कर्म यदि जन्म खड़ा कर देते हैं तो वह कर्म भी आपका क्या है, बुरे कर्म है। इसलिए शास्त्र में पुण्य को भी पापी बोला गया है। जिस पुण्य कर्मों के बल से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाने के बाद उसका पुण्य फल भोगता है और बाद में वहां से फिर से उसको वापस आना पड़ता है, तो जन्म खड़ा किया नहीं किया और दुख दिया नहीं दिया, तो जिन कर्मों से तुम्हें दुख की प्राप्ति हो जाए वह कर्म क्या है, बुरे ही बुरे होते हैं। इसलिए मैं न दूसरे के पाप का चिंतन करता हूं न मैं दूसरे के पुण्य का चिंतन करता हूं। ये भी बड़ा मुश्किल काम है भाई, है नहीं? दूसरे का पाप दूसरे का क्या है, पुण्य। वास्तव में दूसरे का न कोई पाप है न दूसरे का क्या है, पुण्य। ये भी बता दूंगा आपको, आपकी धारणा है, आप एक ही घटना घटित होती है, एक ही घटना को एक दृष्टि से देखोगे तो क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। और उसी घटना को दूसरे दृष्टि से देखोगे तो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो बाहर की घटना ना अच्छी है ना बाहर की घटना क्या है, बुरी है। आपकी दृष्टि में देखने का तरीका क्या है, देखने के तरीके से घटना क्या हो जाती है, पाप और पुण्य हो जाती है। तो यहां बताया कि जो व्यक्ति दूसरे के ना पाप का चिंतन करे न दूसरे के पुण्य का चिंतन करे तो उसके भीतर वो संस्कार नहीं आएगा, और संस्कार न आने से उस संस्कार से होने वाला न सुख होगा न उसको क्या होगा, दुख की प्राप्ति होगी। तो आप अपने भीतर के सारे संस्कारों को क्या कर दो, हटा दो। और इसी को यहां बताया भी जाता है प्रश्न उपनिषद के बाद में मुंडक का आएगा, कौन सा आएगा, मुंडक। प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग है, दोनों एक ही वेद के हैं। कौन से वेद के हैं, अथर्ववेद के हैं दोनों। आपने भी पढ़ा ना ईश, ईश कौन से वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद है। कौन है वो भी मंत्रवाद, शुक्ल के बाद कौन आया, ओ ईश के बाद कौन आया, केन है। केन किसका है, सामवेद तलवकार शाखा से, ठीक ना, तलवल। इसके बाद साम के बाद क्या आया, कठ आया। कठ भी कहां से है, यजुर्वेद से है, ऐसा कृष्ण यजुर्वेद से है। कौन, कठ है। कठ के बाद आ रहा है आपके पास से प्रश्न उपनिषद। इस प्रश्न उपनिषद में भी मतलब अथर्ववेद में भी जिस शाखा का उपनिषद होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग। तो ये जो प्रश्न उपनिषद है ब्राह्मण भाग की है, और जो मुंडक है वह कौन सी भाग की है? मंत्र भाग की। उसमें यही बताया गया है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये सारे उपनिषदों का एक ही निचोड़ है। आज हम लोग सारे उपनिषद पढ़ते हैं, 11-11 पढ़ लेते हैं, और तब भी हमारी निष्ठा एक पे भी नहीं बन पाती है, यथार्थ ही नहीं है। हम 11 क्या 28 पढ़ लेते हैं, और महाराज मंगा लेते हैं 128 वाला उपनिषद मंगा दो, वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी निष्ठा एक पे भी नहीं बन पाती है। अब पहले जो ऋषि जाता था ना, जिस शाखा का ऋषि होगा उसी शाखा वाले आचार्य के पास जाएगा, और जीवन में एक ही उपनिषद पढ़ेगा, और एक ही उपनिषद के पढ़ने के बाद एक ही उपनिषद में उसकी ज्ञान की निष्ठा हो जाती थी, क्योंकि उसके अंदर ने जो ज्ञान की योग्यता की शर्त थी वह तीनों शर्तों को वह पालन करता था। तीन शर्त पहले बता दिया, क्या क्या है? तपसा, ब्रह्मचर्य, श्रद्धया। ये तीन ही शर्त हैं। तपसा, तप करो, क्या हुए जीवन में? तप। दूसरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म का चिंतन, वो तो ब्रह्मचर्य है ही है, क्योंकि उसी चिंतन के बाद तो दुनिया का सारा चिंतन आ जाता है, स्त्री चिंतन अथवा पुरुष चिंतन से रहित होना चित्त की वृत्ति, क्योंकि उसी चिंतन के बाद क्या जाता है, हजार चिंतन हो जाता है। वो ऐसा वृक्ष है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री का यदि चिंतन करो तो दुनिया का सारा ख्वाब उसी में डिपेंड हो जाए, घर होगा, फिर बंगला होगा, फिर सोफा होगा, फिर गाड़ी होगी, फिर कपड़ा होगा, फिर ये होगा, उसी चिंतन के बाद सारा पेड़ तैयार हो जाता है। इसलिए उस चिंतन को तो मेन चिंतन किया है। एक बताया था ना वो कौन सा ग्रंथ था, दुर्वासना प्रतिकार दशकम, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहां एक श्लोक मैंने भर्तृहरि का उसमें कोटेशन में दिया है कि स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री में पांचों विषयों का समावेश है। शब्द सबसे प्रिय वाणी किसकी लगती है बताओ? अब लोग जानते जानते हो, मधुर वाणी किसकी लगती है? स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषयों का समावेश है। किसमें मान लिया जाता है? पुरुष के लिए स्त्री में, स्त्री के लिए पुरुष में। तो अपनी इंद्रियों को, चित्त की वृत्ति को इन विषयों से हटा करके पूरी तरह कहां रखना है? अपने स्वरूप में रखना है। तो निश्चित ही है कि आप मतलब आपके जीवन का लक्ष्य वह परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई विषय आपको दिखाई न देवे तो आप ब्रह्मचर्य हो। और उस लक्ष्य को तो देख लिया, लेकिन जब तक किसी पे श्रद्धा नहीं करोगे तब भी हमें उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो महाराज जी, कैसे हम इन संसार के विषयों का चिंतन हटावे? तो कहा भाई सो हम, अरे वही तो मैं हूं। कौन हूं? जिसके गुणों का मैं चिंतन कर रहा हूं अथवा जिसके पापों का मैं चिंतन कर रहा हूं, वही तो कौन हूं? मैं ही हूं। तो जब मैं वही हूं तो मन से भी, वाणी से भी अथवा कर्म से भी दूसरे को नहीं मैं कष्ट देता हूं। तो जब मैंने कष्ट ही नहीं दिया दूसरे को, ठंड ना, तो जब कष्ट ही नहीं दिया तो कष्ट वाला बीज भी मेरे अंकुर हृदय में नहीं फूटा। तो कष्ट वाला बीज अंकुर में नहीं फूटा, पाप का बीज हमारे हृदय में नहीं फूटा, तो उससे जो वृक्ष पैदा, कटीला वृक्ष पैदा होगा वो कैसे पैदा होगा? नहीं पैदा होगा ना भाई। एक कहावत है क्या, बोए क्या बीज बबूल का, आम कहां से होए? यदि बबूल का बीज बोओगे तो आम कहीं से होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आम को खाने के लिए क्या बोना पड़ेगा? आम का बीज। अब बबूल का बीज बोओगे तो जो आप बोओगे वही तो काटोगे, नहीं काटोगे? तो यदि आपने दूसरे का क्या किया है, कर्म से, मन से, वाणी से दूसरे को आपने दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, दूसरे के हक को क्या किया है, छीना है, तो आप सोचो मेरा हक न छीना जाए, ये होने वाला है ही नहीं। जब मैंने यह काम किया नहीं, जब मैंने दूसरे को दुख बांटा ही नहीं है, तो मेरे हिस्से में दुख आने वाला है भाई। तो यहां तीन चीजें बताई, ध्यान देना। सुखी होने के तीन तरीके, अपने चित्त को उस परमात्मा में लगा दो, बस दूसरे का चिंतन होवे न। दूसरा चीज क्या है, दूसरे के न पुण्य का चिंतन होवे न दूसरे के पाप का चिंतन होवे। तो न पुण्य पाप का चिंतन न होने से उसका संस्कार नहीं बनेगा, और संस्कार न बनने से आपका अगला जन्म नहीं होगा, और जन्म न होने से भी आप क्या हो जाओगे, सारे जन्म और जन्म के बाद होने वाले सारे दुखों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तीसरा, यदि ये भी काम नहीं कर सकते हो तो कर्म से, मन से, वाणी से, जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है उसको ही कष्ट भोगना। कई लोग दिखते हैं कष्ट नहीं देते, लेकिन ध्यान देना, भले शरीर से कष्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन मन से, यदि उनके मन में गलत धारणा है तो उसका भी फल उनको भोगना। अब बल्कि मैं तो कहता हूं कि शरीर का किया हुआ कर्म का फल हो सकता है कम पड़े, लेकिन मन के किए हुए, शरीर से किए हुए कर्म का फल बने या न बने इसमें कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी बन सकता है। जैसे ज्ञानी लोग शरीर से कर्म करते हैं लेकिन मन से कर्म नहीं करते, तो उनके ऊपर उन कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मन से किए हुए कर्म का फल पक्का सबको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मन से भी किसी को कष्ट न दो। तो कर्म से, मन से और वाणी से, कहां से, वाणी से, जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है उसी को ही कष्ट भोगना पड़ता है। हमने किसी को कष्ट नहीं दिया इसलिए हमें भी कष्ट भोगने की आवश्यकता है ही नहीं। तो कैसे नहीं कष्ट दिया, दूसरा व्यक्ति बुरा कर रहा है तो उसके प्रति तो कष्ट देने की वृत्ति आती है। कहते वही तो मैं हूं, जो मेरे को कष्ट दे रहा है वह रूप भी किसका रूप है, सो हम, वही तो मैं हूं। इतना पापम इच्छामि, मैं किसी का बुरा चाहता ही नहीं हूं, किसी को, किसी के लिए पाप करने की इच्छा करता ही नहीं हूं, न मैं किसी का बुरा बोलता हूं, सब मैं एक परमात्मा को देखता हूं, और उसके प्रभाव से मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। तो यदि हम भी संसार के सारे दुखों से बचना चाहें तो क्या करना, पहले अपने आप का निश्चय करना। क्या निश्चय करना है, अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। अब बाद में निश्चय करना सर्वम खल इदम ब्रह्म। ये दो युक्तियां हैं। हम पहले गलत करते हैं, हम पहले संसार को ब्रह्म देखना चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को ब्रह्म देख नहीं पाते, जबकि होना क्या चाहिए, पहले अपने बारे में निश्चय करो कि हम क्या है, ब्रह्म है, ऐसा अनुभव करो। अनुभव करने के बाद फिर आप संसार के सब प्राणियों में किसकी धारणा करना, ब्रह्म की धारणा करना, ब्रह्म की वो करना, सारा संसार ही परमात्मय है ऐसा निश्चय करना, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। उन्होंने एक निचोड़ बताया, तत्कर्म यत्न बंधाय। वास्तव में कर्म वही है जो आपके बंधन का हेतु न बने। जो कर्म आपके बंधन का हेतु बनता है वह कर्म कर्म ही नहीं है। वह कर्म, जो कर्म, देखो दो तरह का कर्म होता है। एक कर्म आपके अंदर के पाप को साफ करता है, और दूसरा कर्म क्या करता है, अंदर के पाप को साफ करके अपना संस्कार भी डाल देता है, ठीक है ना। तो एक बुराई तो जाती है लेकिन दूसरी बुराई आ जाती है, तो वो कर्म नहीं कहा गया। कर्म वह कहा गया जो अंदर से अनात्म कर्मों को क्या करे, साफ तो करे लेकिन अपना कोई संस्कार न डाले, तो उस कर्म का नाम क्या है, कर्म। तो जो कर्म क्या करे, बंधन में न डाले, असा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो आपको क्या करे, बोलो भाई, मुक्त कर दे। और दुनिया की विद्याएं, ये रोटी दाल कमाने की विद्या है। किसकी विद्या है, रोटी दाल कमाने की विद्या है और दूसरी विद्या किसकी है? रोटी दाल कमाने की विद्या है, दूसरे को क्या बना करके है? अपना उल्लू सीधा करने की विद्या है, वो नहीं बोलूंगा। अपना उल्लू सीधा करना, दूसरे को क्या बनाना है? बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करना, इसकी विद्या है। तो ये विद्या से हमारा परमात्मा ही सिद्ध होने वाला है। विद्या वास्तव में यही है जो व्यक्ति को क्या करे, मुक्त कर देवे। और किससे मुक्त कर देवे? संसार के किसी भी संस्कार से मुक्त कर देवे। उसके चित्त में कोई भी संस्कार रहने नहीं पावे, संसार बलात् किसी विषय का चिंतन उसके मन में होवे न, निष्प्रिय रहे, असंग रहे, निर्लिप्त रहे। वह वास्तव में ज्ञान ही ज्ञान है। इसके अलावा जितने भी कर्म करते हो वह सारे कर्म आपका परिश्रम मात्र है, उससे कुछ सिद्ध होने वाला है ही नहीं। ठीक है, बहुत कर्म कर लोगे, बहुत ज्यादा धन पद प्रतिष्ठा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उससे परिश्रम ही मिलने वाला है, कुछ भी आपके काम आने वाला है ही नहीं। और उस विद्या का अलावा और जितनी विद्याएं हैं वह शिल्प नैपुण्यम, वह आपके क्या है, निपुणता है, शिल्प कला है। एक किसी ने किसी के कहने का एक क्या होता है, बड़ा ढंग होता है, वाग बैखरी, भगवान शंकराचार्य ने कहा शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम यदवत भुक्तये न तू मुक्तये। विद्वानों की विद्वता है कि शब्दों की झड़ी लगा देते हैं, शब्दों का इतना बढ़िया तारतम्य बैठाते हैं, है ना। प्रवचनों की स्टाइल किसी किसी की ऐसी होती है, एक कोटेशन की तरह नोट करने वाला होता है, मतलब नहीं, मतलब उनकी अपनी निष्ठा पे नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रवचन की स्टाइल देख, तदुन सागर जी महाराज का देखना, एक उनके छोटी छोटी क्या है, कविताओं के रूप में, चिता में जाने के पहले तुम चिंतन कर लो, मतलब इस तरह से एक शब्दों का एक तारतम्य ऐसा बैठा देते हैं कि व्यक्ति को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर लेता है। लेकिन प्रभावित करने वाले शब्दों के साथ साथ है। हम तो कहते दुनिया प्रभावित हो या ना हो उसकी चिंता करना क्या कर देना, तुम छोड़ देना, लेकिन तुम प्रभावित हो जाओ, हम प्रभावित हो जाएं। जो शब्द हम बोलते हैं दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, उन शब्दों से मेरा अपना मन प्रभावित हो जाए, हमारे मन में उसकी निष्ठा प्रबल हो जाए, तब जानना हमने उस ज्ञान को अर्जित किया, अन्यथा हमारा ज्ञान भी क्या हो जाएगा, किसी काम आने वाला है ही नहीं। अंतिम समय में ज्ञान क्या हो जाएगा, छूट ही जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय में न जो संस्कार बना रहेगा न उसी की स्थिति बनी रहेगी। ये जो अभी हमारी सारी तैयारी चल रही है न, ये अभी के लिए नहीं तैयारी चल रही है, किस समय, मृत्यु के लिए तैयारी चल रही है। अभी भी थोड़ा बहुत काम आता है, जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती ना, बताया था ना, धन हानि हो गई, शरीर में क्या आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, मृत्यु का सामना करना पड़ गया, पति पत्नी ने हमारा अपमान कर दिया, समाज में लोगों ने क्या कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, उस समय यदि आपका चित्त शांत है, ध्यान देना, तो समझना आपकी गति साधना की बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो निश्चित ही आप मृत्यु के काल में जो फाइनल परीक्षा दोगे उसमें आप पास हो जाओगे। यदि अभी छोटी छोटी परीक्षाओं में भी हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो मृत्यु के काल में तो पक्का क्या हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। लेकिन यदि क्या ये मंथली टेस्ट है, जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें यदि पास हो गए तो मृत्यु के समय में आप कभी फेल है, यदि इन परीक्षाओं में हम फेल हो गए तो सही बताऊं, मैं तो अपना देखता हूं कभी न कभी फेल हो जाता हूं, मैं तो सही बताऊं। कल घूमने जा रहा था वहां, तो चौकीदार ने रोक लिया, कहां जा रहे हो, कहा भाई रोज जा रहा हूं सैर करने, मांगने तो नहीं जा रहा है, तू मांगने तो नहीं जा रहा है, मतलब महात्माओं को भिखारी समझते हैं, चौकीदार भी भिखारी समझ रहा है, मांगने तो नहीं जा रहे हो, हम कहा भाई नहीं मांगूंगा, मैं किसी से घूम के आऊंगा, लेकिन एक झटका अंदर तो, मतलब भिखारी महात्माओं को ये लोग क्या समझते हैं, फिर मैंने सब उसका क्या दोष है बेचारा, भिखारी ये कपड़ा पहन करके लोग मांगते ही रहते हैं, तो इसलिए उसने यथार्थ ही बोला है, यथार्थ को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार, करना भी चाहिए, फिर घूम के आ गया क्या करता। लेकिन कहने का मन में दुख तो आया ना, तो जरा सा भी दुख आवे न तो समझ लेना परीक्षा के समय। कौन सी परीक्षा? मृत्यु वाली परीक्षा। जब सब छूट जाएगा, न जाने लोग क्या क्या बोलता जाएगा, लेकिन फिर भी मन क्या रहे, शांत रहे, तो हम पास हो गए। असामान्य रूप से थोड़ा इसकी भूमिका लेते हुए मैंने बता दिया, क्योंकि आकस्मिक एक दिन का प्रवचन था। कल से महाराज जी आएंगे और इसके बाद गीता जी चलेगा। ओम शांति शांति शांति।